इस हम्मत ताइफतान मिनकुम अन तफशला, जब तुम में से दो जमातें इरादा कर चुकी थीं कि हिम्मत हार जाएं, वल्लाहु वलीयुहुमा, और अल्लाह उन दोनों का दोस्त था, वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, और चाहिए कि अल्लाह ही के ऊपर तवक्कुल करें ईमान वाले। हम कलफसा है, ता इसमें मुअन्नस की है, हम्मत में हा मीम मीम है। हम कहते हैं पिघलने को, पिघलना, बहना और आहिस्ता आहिस्ता रींगना, और हम कहते हैं गम और हुजन को, भला क्यों? क्योंकि गम भी इंसान को पिघला देता है। अच्छा, एक लफ्ज़ होता है हम और एक होता है गम, आप में से किस किस को वो दुआ आती है, अल्लाह हुमाइनी अब दुखे इब्नो अब दिख, उसके आखिर में क्या आता है? अंत जलिल कुरान अलजीम रबी अकलबी व नूर सदरी व जला हुजनी व गम्मी व हम्मी। तो गम और हम, इसमें क्या फ़र्क है? हम का लफ्ज़ हम पढ़े ना, तो हम और गम में क्या फ़र्क है कि गम इस कर्ब को कहते हैं जो किसी बात के वाक़े होने के बाद दिल में पैदा होता है। यानी कोई मर गया तो उसकी मौत ने हमें गमजदा कर दिया, कोई छोड़ गया तो उसके छोड़ने से हम दुखी हो गए, लेकिन हम उस कर्ब को कहते हैं जो किसी पेश आने वाली मुसीबत के ख्याल से भी पैदा हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना, मुझे वहम आ रहे हैं, हाय मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, हाय मेरे शौहर को कुछ ना हो जाए, तो हम में मुस्तकबिल के अंदेशे होते हैं, गमगीन और बेचैन हो जाना। अल्लाह ताला ने यहाँ क्या बताया? इस हम्मत, इरादा किया था, उनको लगाओ हो अब्दुल्ला बिन उबई 300 को लेके चला गया, अब कौन होगा, अब तो लोग आते ही नहीं, जो आते थे वो भी चले गए, भाई वो भी तुम जैसे ही दुनियादार थे, वही तुम जैसे नरम थे, वही ढीले थे। अच्छा, जो आता है ना वो और आने वालों को देखता है, और जो जाता है ना वो किसी माजी के जाने वाले को देखेगा, वो क्यों नहीं है इधर? तो भाई कोई पढ़ने के बाद तो नहीं वहाँ बैठा रहता? ये तो आप में से चंद खुशकिस्मत हैं जो भी 4-6 साल से बैठे स्कूलों में। देखिए, जब हम मैट्रिक से पास हो गए तो हम स्कूल में कभी गए ही नहीं, कॉलेज चले गए, कॉलेज में गए तो फर्स्ट ईयर किया तो सेकंड ईयर में चले गए। दुनिया का हर स्कूल ऐसे कहते, अच्छा वो फलां आता था अब क्यों नहीं आता? भाई वो पढ़ के चले गए, फारिग हो गए, अब कुछ और कर रहे होंगे, मिसाल है। पर आप अपने ना आने की दलील में ऐसे झूठे सहारे ढूंढ रहे होते हैं, अच्छा इसका अंतर जो आते हैं फिर वो चले ही जाते हैं। तो भाई रखता तो कोई किसी को नहीं, सिर्फ अल्लाह उनको रखता है। वो कहते हैं ना कि जिन्होंने काम अच्छा किया उनको छुट्टी ना मिली। अल्लाह की ये जगह वो जगह है जो अच्छा काम करने वालों को कभी छुट्टी नहीं देती। इधर ही रहेंगे आप, पहले पढ़ते थे आप पढ़ाएं, पहले आप अगर स्टूडेंट थे अब आप टीचर बन जाएं, तो वो यूनिवर्सिटियाँ और इदारे बड़े अक्लमंद होते हैं जो अपने अच्छे लोगों को हायर करते हैं। आपके बच्चे अगर कहीं भी दुनिया में पढ़ते हैं कंप्यूटर्स में या इंजीनियरिंग में, तो आप देखिए अच्छे स्टूडेंट्स को अपने ही कॉलेज में जॉब मिल जाती है, प्रोफेसर बन जाते हैं, क्योंकि ये अच्छा स्टूडेंट है, ये चलेगा। जो डॉक्टर 10-20 साल अच्छी प्रैक्टिस कर चुका है उसको उठाकर मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर बना देते हैं, कहते हैं मरीजों को बहुत देख लेंगे पर तुम आओ और अपना टैलेंट देकर उस्ताद बनकर औरों को भी अच्छा बनाओ। अच्छा टीचर बनना ये कोई आसान काम है? ये तो खाला जी का बड़ा ही नहीं है। हर काम अच्छा है, आप फर्श चमका सकते हैं, आप दीवारें चमका सकते हैं, लेकिन आप दिल नहीं चमका सकते, आप जहनों के शुबे नहीं दूर कर सकते। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ उन दो ग्रोहों का तस्करा किया, बनु सलमा और बनु हारिसा। पीछे वाक्य सुना चुकी हूँ, दूसरों को जाता देख कर हिम्मतें टूटती हैं, लेकिन क्या इनका इरादा हुआ? अन तफशला, तफशला का लफ्ज़ पहली दफ़ा आया आपके सबक में, फा शीन लाम, फशीला यफ शलू कहते हैं कमजोर और बुजदिल होने को। असल में अल्फिशलू कहते हैं हौदज के पर्दे को। हौदज क्या होता है भला? डोली। पहले दौर में दुल्हनों को डोली में लेकर जाते थे ना, अब तो अल्लाह माफ करे दुल्हन डोली में पूरी कैसे आएगी, क्या हालात होंगे उसका, तो जोड़ा ही को 10 किलो का होगा, उन्होंने कहना है हम नहीं इसको पकड़ते। लेकिन वो जो डोली के अंदर पर्दे लगे होते हैं ना, जिसके अंदर दुल्हन बैठी होती हैं ये औरतें, उसको फिशल कहते हैं, या वो गद्दा जिसे हौदज में बिछाकर इस पे औरतें बैठती हैं। तो फशीला का फिर मानी क्या हुआ? औरतों की तरह बुजदिल हो जाना। यानी औरतों को तो अच्छे लगते हैं ये लाड और नरम मिजाजियां, मर्दों को नहीं अच्छी लगती। इसी तरह अलयदलुल फशला कहते हैं बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को, जो अमूमन दाएं हाथ की निस्बत कमजोर होता है। लेकिन ये फुसा अरबी नहीं है, ये एक आम स्लैंग लैंग्वेज में ये लफ्ज इस तरह बोलते हैं लोग। तो फिर फशल में कमजोरी और बुजदिली भी आ गई। आगे जाके हम पढ़ेंगे, वला तनाज़ौ फतफशलू, आपस में झगड़ा ना करो वरना तुम बुजदिल हो जाओगे। तो जो कौमें आपस में लड़ती हैं, जो टीम के लोग एक दूसरे के लिए दिलों में बुग़ज़ और नफरत रखते हैं कमज़ोर हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो औरतों की तरह चूड़ियाँ पहनकर घर बैठ जाते हैं और मैदाने जंग में उनकी कोई जगह नहीं रहती। अंतःशला के अंदर लाम अलिफ जो है ना, ये तस्निया की है, दो ग्रोहों का तस्करा है, हालांकि वल्लाहु वलीयुहुमा, अल्लाह उन दोनों का दोस्त था। ये कौमें या ये कबीले खुशी महसूस किया करते थे, बनू सलेमा और बनू हारिसा कहते थे कि जाहिर तो इसमें हमें डांट पड़ी है ना, है ना, देखे ना आप कोई निकल रहा होता एकदम कहते आप किधर गए, तो कॉन्शियस होगा ना। अब वैसे ही आयत ना आती तो किसी को नहीं था पता चलना कि बनू हारिसा और बनू सलमा ने निकलने का इरादा किया था, छुप जाती ना बात, पर वो खुश किस बात पे पता, वल्लाहु वलीयुहुमा, कहते थे जो भी हुआ हमारे दिल में आया लेकिन अल्लाह ने हमें फिर भी अपना दोस्त कहा कि मैं उनका दोस्त हूँ। जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं ये आयत हमारे बारे में नाजिल हुई, हम में से दो जमातें इसका ख्याल कर बैठी थी कि हिम्मत हार दें, हालांकि अल्लाह ताला दोनों का मददगार था। सुफयान ने बयान किया कि हम दो जमातें बनू हारिसा और बनू सलेमा थे, हालांकि इस आयत में हमारे बोधेपन, बोधापन के बुजदिली, कमजोरी, वीकनेस का जिक्र है, मगर हमको ये बात पसंद नहीं कि ये आयत ना उतरती, क्योंकि इसमें मजकूर है कि अल्लाह इन दोनों गिरोहों का मददगार है। ये सही बुखारी की रिवायत है, इसी आयत की तफसीर में जाके आप देख सकते हैं। अंतःशला से क्या मुराद है, हिम्मत हारना क्या है, कमजोर पड़ जाना, आई कैंट कॉप, मैं कॉप नहीं कर पा रही, मैं लेके चल नहीं पा रहा। और यहाँ तफशिला से मुराद था कि नबी सल्लम को छोड़कर हम अपने घरों में लौट जाएं, या इसरुल तफसीर है उसकी रिवायत मौजूद है। बुजदिली दिखाई जैसे अब्दुल्ला बिन उबई और उनके साथी थे, इससे पीयर प्रेशर का भी पता चलता है, ये बात बड़ी नोट करने के काबिल है। जब आपके खानदान के 10 लोग एक काम करेंगे ना तो आप 11वीं हैं ना तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा, बट अगर आप पहली हैं ना तो बहुत मुश्किल लगेगा। हम वो करना चाहते हैं जो लोग करते हैं, हमें वो आसान लगता है जो दूसरों को अच्छा लगता है, और अकेला अपोजिट द टाइड या अंगेज ना विंड्स चलना ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये काम बड़ी हिम्मत वालों का काम है। अब्दुल्ला बिन उबई जा रहा था, कोई उसके लिए भी आयत उतरती, देखिए आप अभी जिक्र ही नहीं है कोई उसका, हदीसों पे पता है अल्लाह ने कुरान में उसका तस्करा करना पसंद नहीं किया, गेट आउट, कोई आता है कोई नहीं आता फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं आता बहुत फर्क पड़ता है। और यहां से ये भी नोट कीजिए, मैं आप सबको दोबारा मुखातिब करूंगी नए लोगों को, आप देखिए कि आजकल आप कोर्स कर रहे हैं ना, आप छुट्टी कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा किसका नुकसान होगा, आपका होगा, आपके ग्रुप लीडर को तकलीफ होगी, आपको दोबारा सबक सुनाना पड़ेगा, टेस्ट मिस होगा, लेकिन नुकसान सरासर आपका है, और अगली दफ़ा फिर उस टेस्ट में बैठने को दिल ही नहीं करेगा, पिछला नहीं दिया बगला क्या दूँ, पाइल अप होता जाएगा, खीर आएगा, कहेंगे गिव अप, मैं इतना कट्ठा नहीं पढ़ सकती, बात चली जाएगी। बट कल अगर आप एक उस्ताद बनने के नाते से छुट्टी करेंगे, या आप रिसेप्शनिस्ट बनने से, या आप बच्चों को देख रहे थे छुट्टी करेंगे, तो कितनों का नुकसान होगा। ये बात है, ट्रेनिंग के मराहिल इल्म के मराहिल से बहुत शदीद होने चाहिए। हमारे मुल्कों में तालीम तो है तरबियत नहीं है, जिस इदारे का निज़ाम ढीला ढाला होगा और वहाँ के बड़े लोग अपनी जिम्मेदारियों से फरार चाहें और उनके कान पे जूं भी ना रींगे तो वो उसको मजबूरियों की आड़ में ले आए, वो लोग ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर सकते, ये अलग बात है कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मुझे आपको आज भी अगर मौका मिले ना अपने आप को चेंज करने का तो करना है, क्योंकि हमने इतनी बड़ी खबर सुनी है कि कितने लोग हादसे में मारे गए, हर एक अपने अमलों पे गया। अगर वो शख्स जिसको आज लोग जुनेद जमशेद समझ कर याद कर रहे हैं, आज से 8-10-20 साल पहले जब भी उन्होंने अपनी लाइन को चेंज किया उस पर मर चुके होते तो उनके जनाजे में कौन होता, आज उनको किन किन नामों से लोग याद करते, जालिम तो अभी भी नहीं छोड़ रहे, तो अब अल्लाह तो कबूल कर लेता है, बंदे नहीं कबूल करते, हाल तो ये है। हम किस पे मरेंगे, मैं सोचती हूँ कल मैं डेथ बेड पे हूँ और मेरे इर्द गिर्द जो लोग आके बैठे वो मेरे बारे में क्या बातें करते हैं, बड़ी ढीली थी, बड़ी गुस्से वाली थी, जब दिल करता था आती थी, जब दिल करता था नहीं आती थी, जब दिल करता था पढ़ाती थी, जब दिल नहीं करता था पढ़ाती थी। मैं ये नहीं कहती कि मैं आपको हमेशा ही पढ़ाती रहती हूँ, लेकिन मैं आपको फीलिंग्स की बात बता रही हूँ कि एक अच्छे इंसान के अंदर हमेशा अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, और मजबूरियाँ तो अल्लाह से मांगी है, अल्लाह मेरे ऊपर क्यों आ रही, सुस्ती है तो अल्लाह मैं ही क्यों सुस्त हूँ। आप देखेंगे वालल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून में सबक है, आप सोचते हैं मैं क्या करूँ, हर एक को हम में से अपनी कमजोरियाँ दिखती हैं, फिर ऐसी आयतें सुनकर हम कहते हैं फिर मैं क्या करूँ, तो तवक्कुल करें और तवक्कुल के एकल व तवक्कल. ट्राई योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट टू अल्लाह सुभान तआला. डोंट गिव अप. फत्तकुल्लाह मस्तता तुम. अल्लाह ताला तुम्हें थाम लेगा अगर तुम अल्लाह पे तवक्कुल करोगे. तादाद कम है, सामान कम है, हालात ख़राब है, इट्स ओके, ठीक हो जाएंगे. तादाद की कमी अल्लाह फरिश्तों को भेजकर बुला लेगा. सामान की कमी अल्लाह असबाब पूरे बना देगा और कमी दूर हो जाएगी. असल बात अल्लाह पे तवक्कुल तो करो. बनु हारिसा और बनु सलेमा को अल्लाह तसल्लियाँ दे रहा है कि तुम अब्दुल्ला बिन उबई के ऊपर भरोसा करते हो. यहाँ एक नुक्ता लिखे, बड़ा अहम है. अब्दुल्ला बिन उबई चला गया, 300 बड़े बड़े अमीर लोग चले गए, अब कौन जिताएगा? तो अल्लाह का एक सवाल है, बड़े गौर से लिखिए, जम है इस सबक का. ग़ज़वा बदर में क्या अब्दुल्ला बिन उबई था जिससे फतह हुई थी? जब अब बदर में फतह हो गई अब्दुल्ला के बगैर, वो तो उसके बाद मुसलमान हुआ, तो क्या उहद में उसके छोड़ने से कोई फर्क पड़ेगा? तो यहां से बहुत बड़ी बात लिखे, डोंट रिलाई ऑन पीपल. फलां नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, फलां ना आया तो मैं काम नहीं करूंगी. हम में से हर एक अपने हिस्से का ईंधन डाल रहा है. शैतान की लगाई हुई आग के खिलाफ कि इसको बुझाना है, इस गंदगी को दूर करना है. लेकिन कल कोई शख्स बीच में से उठ के निकल जाए, मैं ही कल उठ के चली जाऊं, मुझे अल्लाह अपने पास बुला ले, तो फल या तवक्कल, अल्लाह पे तवक्कुल करना ईमान वालों ने. किसी लीडर का होना ना होना, किसी साथी का होना ना होना, किसी डिपेंडेंट का होना ना होना, कोई फर्क नहीं डालता. असल बात यह कि अल्लाह के साथ तवक्कुल हो. सवाल पैदा होता है कि बंदे का तवक्कुल अल्लाह के साथ होता कैसे? ईमान और तवक्कुल साइमल्टेनियस चलता है, बराबरी. जैसे सी सॉ है ना, दोनों पलड़े बराबर के हैं, तो आपकी सी सॉ का जो एंगल है वो सीधा रहेगा. ईमान बढ़ाइए. और ईमान कैसे बढ़ाना है? वस्ताइन बिसबरी वसला. इसी कुरान को सुन के ईमान बढ़ता है. मैं सोचती हूँ आपको समझ नहीं आ रहा ना, जिस वक्त मैं क्या करूँ, इतने काम है मेरे पास, सब छोड़ के कागज कलम लेके अंदर आके बैठ जाए कि मैं अभी कुछ सीख लूँ. ऐसी एनर्जी लेकर आप उठते हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं होता. तभी तो आप देखिए आगे अल्लाह करें, वलकद नसरकुम अल्लाह बिबद्रिन वअंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून. और बिला शुबा यकीनन अल्लाह ताला बदर में भी तुम्हारी मदद फरमा चुका, हालांकि तुम इंतहाई कमजोर थे. चुनाचे अल्लाह से भी डर जाओ ताकि तुम शुक्र करो. वही इशारा दिया कि बदर में तो इससे भी कम थे, आज तो 700 हो, उधर कितने थे? 313. वहां तो सिर्फ 2 घोड़े थे और 70 ऊंट थे, बाकी सारे पैदल थे. अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि बदर के दिन हम लोग सवारियों की किल्लत की वजह से एक ऊंट पर 3-3 लोग सवार होते थे. बरा बिन आसिफ कहते हैं, हम असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपस में ये गुफ्तगु करते थे कि असहाबे बदर की तादाद भी इतनी ही थी जितनी असहाबे तालूत की, पढ़ चुके हैं ना दूसरे पारे के एंड पे, जिन्होंने आपके साथ नहर फलस्तीन पार की थी. और इनके साथ नहर को पार करने वाले सिर्फ मोमिन ही थे, यानी 310 पर कई आदमी. ये बुखारी की रिवायत है 3958 नंबर की. इसी तरह अबू लुबाबा और अली रजी अल्लाह अन्हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक कूट पे थे. तीन लोग कैसे थे? अबू लुबाबा, अली और मोहम्मद रसूलुल्लाह एक कूट पर थे, बारी बारी सवार होते. जब रसूलुल्लाह के पैदल चलने की बारी आई तो अबू लुबाबा और अली ने अर्ज की, आप तशरीफ रखिए, हम आपकी तरफ से बारी बारी पैदल चलते हैं. इस पर आपने फरमाया, तुम दोनों मुझसे ज्यादा बाहिम्मत नहीं हो सकते, और ना ये हो सकता है कि तुम दोनों अजर ले जाओ और मैं महरूम रह जाऊं. मुसनद अहमद की रिवायत है. तो क्या पता चला, मदद तो अल्लाह की तरफ से आती है, और जब आती है तो बहुत आती है. नसरकुम का लफ्ज़ नुसरत पीछे पड़ चुके, आगे भी आएगा. बदर के लफ्ज़ को थोड़ा सा देखते हैं, ये पहली दफ़ा आया हमारे सबक में. बादल रो, बादरहु मुबादरतन बिदारन, इसका मतलब होता है इस काम के लिए जल्दी करना जो खुद को अच्छा लगे. सच बताएं, जिस काम में दिल लगता है भाग भाग के करते हैं. सुबह जल्दी जल्दी भाग भाग के कितने लोग आ रहे होते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो वो साइन भी बन गए ना कि वो पैदल चलता हुआ भी दिखा रहे हैं कौन मरियल चाल चल रहा है. अच्छा, हम सिर्फ अपनी चाल के आईने में अपने आप को देख लें. अगर आपको लगता है ना मोटिवेटेड नहीं है किसी काम के लिए, आप भागना शुरू हो जाएं. यहां से आप जाएंगे ना कैंटीन में, अभी कुछ लोगों ने तो अभी कुर्सी उठा के सीधी नहीं करनी, बाकी ने जाके खाना भी ले लेना. हिम्मत लाएं, बड़े तेज कदम उठाएं, इंथोसिस्टिक लगे, बीमार ना लगे, परेशान ना लगे. तो बादरा क्या हुआ? खुशी खुशी किसी काम में जाना. सूरह निसा में ये लफ्ज आएगा इसराफम व बिदारन, फजूल खर्ची और उजलत करने के लिए ये लफ्ज आता है. तो मुराद इस काम में जल्दी है. अब इंसान जब अपनी पूरी कुव्वत सर्व कर देता है तो उसको भी मुबादरा कहते हैं। अच्छा, इससे कोई चीज होती है? बदर, चौदहवीं के चांद को कहते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन चांद पूरा होता है, किसी काम का पूरा और कामिल होना, भरा हुआ होना और जल्दी से जाना। और बदर जंग क्यों थी? क्योंकि मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह का नाम था जहां ये जंग हुई थी, और कुआं भी था इसी नाम का। अरबों में जगह अमूमन किसी न किसी दरख्त या कुएं और कुछ इसी चीजों के नाम पे थी। और अंतुम जिल्ला, वही जो कल हमने पढ़ा था, जाल लाम लाम, याद है? जाल की जेर से क्या था और जाल की बेर से, कल के सबक में ये रूट हम डिस्कस कर चुके हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तुम जलील थे, तुम कमजोर थे, मैंने तुमको पकड़ा। और हकीकत है कि अल्लाह की जात है जो इंसानों की मदद करती है। कहा करो क्या? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र करो। क्या पता चलता है? अल्लाह ताला बंदे को मौके देता है ताकि पिछले मौके से फायदा उठाकर आगे चले। जिंदगी में बहुत सारी बसें हमारी मिस हुई, अब जो बस है ना उसको पकड़ लो। जिंदगी में अपने लिए एक चैलेंज मुकर्रर करें, मैं जिस काम को पकड़ लूं मैंने उसको नहीं छोड़ना। शुरू किया तो इसको छोड़ना नहीं है, पूरा करना है, अधूरा है तो पूरा, वरना सारी जिंदगी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और आपका कॉन्फिडेंस आपको ही नहीं लेके डूबता, दूसरों को भी ले जाता है। यानी आपके एतमाद की कमी सिर्फ आप ही को नुकसान नहीं देती, दूसरे कहेंगे उसने भी शुरू किया पूरा नहीं किया, इसने पहले भी किया पूरा नहीं किया, अब भी शुरू किया पूरा नहीं किया, हम भी नहीं कर सकते। गैर महसूस तरीके से आप दूसरों के कदम भी रोकने वाले बनते हैं। फिर आप देखिए कि फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून है, तो तकवा और शुक्र का क्या आपस में ताल्लुक है? क्या ये दोनों एक ही चीजें? तो तकवा अल्लाह के डर और उसके खौफ से पैदा होने वाली हालत है, इसमें मोमिन का शऊर बेदार हो जाता है। जब शऊर बेदार होता है तो मोमिन हकीकत को समझने के काबिल होता है, अल्लाह के एहसानात को पहचानता है, फिर दिल में शुक्र आता है। यानी ये दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। अल्लाह का डर और अल्लाह का शुक्र, ये दो चीजें हैं जो बंदे को लेकर चलती हैं। आपको मुझे इस चीज के ऊपर ईमान लाने की जरूरत है। यकीन रखिए कि आपका मालिक आपके छोटे से अमल को बढ़ा कर आगे फैला देगा, शर्त यह कि आपके अंदर ये सब कुछ मौजूद हो। आज मैं और आप इतने आरामदेह माहौल में बैठकर ये जंगों के किस्से पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग इन मैदानों में जाकर लड़े और जिन्होंने बहादुरी के जौहर दिखाए, कभी आप और मैं उनकी असल को पहचान ही नहीं पा सकते अगर हमने खुद ये कभी ये कुछ ना किया हो। और ये भी याद रखिए कि असबाब पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, असबाब अल्लाह के हाथों में है। हुए हुए अल्लाह खत्म कर दे, दूसरों को पीछे कर दे। इसीलिए देखिए, पहले अल्लाह ताला की तरफ से तसल्लियां दिलवाएंगी, अब अल्लाह के नबी सल्लम की तरफ से ये बात कहकर बताएगी कि देखो, तुम्हें जो कहा जा रहा है वो अल्लाह के हुक्म से कहा जा रहा है, तुमने बस करना क्या है। इस तकूलु लिल मोमिनीन, जब तुम कह रहे थे मोमिनों से, कौन किसको कह रहा था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों से कह रहे थे, अलैं यकफियकुम, क्या नहीं काफी तुमको? यानी डजंट सूटेबल फॉर यू, या इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर यू? क्या रब्बुकुम, तुम्हारा रब, भी सलासती आलाफ मिनल मलाइकती, के तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे 3,000 फरिश्ते, मुनजलीन, जो उतारे गए आसमान से। तसल्ली दी जा रही है, तुम 300 के जाने को रो रहे हो, अगर अल्लाह तुम्हें 3,000 के फरिश्ते दे जिनकी ताकत तुम लोगों से वैसे ही ज्यादा है, तो क्या तुम खुश नहीं हो? तुम अपने आप को लोगों की नजर से क्यों देखते हो? अल्लाह ताला तुम्हें फरिश्ते और भी दे देगा। और वाकई देखा जाए, आपको कोई कहे कि आपका काम इंसान करें या फरिश्ते, आप क्या चूज करेंगे? फरिश्ते। लेकिन अल्लाह ने फरिश्तों से नहीं कराना। यहां लिखिए, तबीयत के एतबार से बंदा कहता है फरिश्ते आए सफाई कर दें, फरिश्ते आए खाना पका दें, फरिश्ते आए पढ़ा दें, फरिश्ते आए मेरा टेस्ट दे जाएं, फरिश्ते आए सारे पेपर चेक कर जाएं, फरिश्ते आए सारे बच्चों को बेबीसिट कर दें। तो अगर फरिश्तों से ये सब कराना था तो इन्नी जाइलुम फिल अर्दी खलीफा क्यों का? लिखिए, अगर अल्लाह ने फरिश्तों से इस्लाम को गालिब करना होता तो किसी नबी की जरूरत नहीं थी। और ये नबियों के जिहाद और इनकी जिंदगियों की सऊबतें और इनका गली गली फिर के कौम फानजिर पे अमल करना, ये जरूरी नहीं था। फरिश्ते सिर्फ और सिर्फ तसल्ली के लिए आते हैं। लिखिएगा, बला, अगली आयत के अंदर इसका जवाब है, बला, बल्कि। यानी बला का मतलब क्या लिखें? कि फरिश्तों का आना कोई बड़ी बात नहीं है, मत सोचो कि मदद फरिश्तों के आने से हुई, बल्कि बला, बल्कि, आगे ब्रैकेट में लिख लें, बल्कि मदद या नुसरत या फतह कब आएगी? इन तस्बिरू व तत्तकू, اے مسلمانوں، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کی روش پر رہو گے، وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا، اور اگر وہ فوری طور پر تم پر حملہ آور ہو جائیں یا جوش سے تم پر آ جائیں، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا 5,000 فرشتوں کے ذریعے سے جو نشانیاں لگے ہوئے ہیں. اور رہ گئے یہ جو 3,000 فرشتے اترے تھے، تو آیت 126، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت، صرف تمہارا دل مطمئن ہے. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. اصل اصول کیا ہے؟ یہ جو آخری سن آیت کا، اس کو ہائی لائٹ کریں. ساری باتیں جو ابھی تک کہیں نا، اس کے بعد کا کہہ لیجئے کہ خوبصورت جملہ، وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، ورنہ مدد تو ہونی اللہ ہی کی طرف سے ہے. کون سا اللہ بھائی؟ العزیز الحکیم، جو غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. یعنی ان اسباب اور فرشتوں کے آنے جانے میں نہ چل پڑو، یہ تو اللہ کی طرف سے بشارت تھی، تمہارے دلوں کو اطمینان دیا گیا، ورنہ اللہ فرشتوں کو بھیجے بغیر بھی مدد کر سکتا ہے. وہ کن فیکن کی شان رکھتا ہے. تمہیں یہ بشارت تمہاری طبعی بشری طبیعت کے حوالے سے دی جا رہی ہے، ورنہ گھبرا جاؤ گے. 3,000 کی تعداد میں دشمن سامنے ہے، تو مدد کو فرشتے 3,000 ہوں گے. اگر وہ فوری طور پر حملہ آور ہوگے تو ہم تو 5 اور بھیج دیں گے، 5,000 بھی بھیج دیں گے. یعنی تعداد میں نہ پڑو. اب بعض لوگ کہتے ہیں، اچھا 3,000 اترے تھے کہ 5,000 اترے تھے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، 50,000 اتر جاتے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے حکم سے ہی یہ سب کچھ ہوتا ہے. اللہ کی ذات بندے کا ہاتھ تھام لے، فرشتے کیا مٹی کے ذرے. سورت انفال میں آپ پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں مٹی کے کنکر پکڑ کر دشمنوں کی طرف پھینکے تھے، تو اللہ نے دشمنوں کی آنکھوں میں ڈال دیے. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ تم نے نہیں پھینکے، یہ تو اللہ نے پھینکوائے ہیں. اور یہ سارا اللہ نے کیوں کیا؟ 127، لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی اللہ کی اس مدد کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کافروں کی ایک جماعت کو کاٹ دے، قطع کر دے، طرفن ٹکڑا، من الذین کفروا، کافروں کا، یعنی کافروں کا زور توڑے. او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کر دے، فینقلبوا خائبین، تو وہ پلٹ جائیں گے نامراد ہو کر. ایسے لوگ کچھ بھی نہیں پا سکیں گے، ایسے لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا. آپ دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کا دل بھان دیتی ہیں. اللہ ساتھ دے دے، پھر کسی بات کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کی ذات جب بندے کا ساتھ چھوڑتی ہے، تو پھر اس کے بعد ہی انسان دھکے کھاتا ہے. آج ہم 2 بلین کے قریب مسلمان ہیں، وہاں 300 تھے، اور وہاں اب غزوہ احد میں 700 ہیں. کیا آپ کا فتح و شکست کے پیمانے مقرر ہو رہے تھے وہاں؟ آج جیسے بلینز لوگ ہوتے اور کروڑوں کی تعداد کے مسلمان ہوتے، تو فتح دیکھ لیجئے کس میدان میں فتح ہو رہی ہے. آخر سمجھوتوں بھی جنگیں بند ہوتی ہیں، اور اوور نائٹ جنگ بند ہو جاتی ہے. مہینہ پورا لگی رہتی ہے اور دوسری جاتیں شروع ہوتی ہیں. پرسوں آپ کو پڑھا کر گئی تھی سبق کے، جس میں یہ لکھا ہوا تھا سب کچھ کہ ان کی سازشیں اور مسلمانوں پہ، بلکہ کل ہی کی بات ہے، تو ایک ویڈیو دکھائی کسی نے کہ آپ بھول جائیے بوسنیا اور فلاں فلاں، جن جن محاذوں پہ جنگیں لگی ہوئی ہیں. اس وقت آپ کو پتا ہے کہ لیٹسٹ ریسنٹ جو مسلمانوں کے اوپر جنگ مسلط کی گئی ہے، وہ افریقہ سائٹ پہ، یعنی ادھر ملیشیا اور انڈونیشیا کے پاس، ایک افریقی ملک کا جگہوں میں سے ایک مسلمانوں کی اتنی سی بستی ہے. اور اس وقت جو ان کے اوپر ظلم و ستم ٹوٹ رہے ہیں، کہ اللہ کے باتیں سچ ہیں کہ یہ اپنے دلوں میں کیا بغض رکھتے ہیں، صرف اس لیے کہ مسلمان ہو. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور کسی بات کا انتقام نہیں لیتے سوائے اس بات کا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا اللہ ایک ہے جو غالب اور حکمت والا. تو وہی بات ہے کہ برق گرتی ہے بے چارے مسلمانوں پہ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کھرے اور کھوٹے کو الگ کر دیتا ہے. اور یہاں فرشتوں کی بار بار بات آ رہی ہے. صبر تقوی کا ذکر پچھلے سبق میں تھا، یہاں بھی موجود ہے. لکھ لیجئے، اللہ کی مدد یعنی کامیابی کا وعدہ مشروط ہے، مگر 3 شرطیں بیان ہوئی ہیں. نمبر 1، صبر. کسی نے حملہ کیا، صدمہ ہوا، صبر کیجئے. نمبر 2، تقوی. انسانوں کا رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہو، قائم کرنا ہے، اللہ کا ڈر ہو، فتح ہو کہ شکست ہو یا کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کا دامن تھام لیا. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، صبر اور تقوی، जब आप इस काम में आ जाएंगे तो अल्लाह ताला मदद कर देंगे। और तीसरी बात, जोश और जज्बे के साथ आना। जब आपके मेरे अंदर इस्लाम की सच्ची मोहब्बत होगी ना, तो अल्लाह ताला मुझसे कुछ ले ही लेगा, तड़प पे तो ज़रूर बचा लेगा मुझे। वयातूकु मिन फौरिहिम खाज़ा, और दुश्मन तुम पर अपने सख्त जोश में पहुँचेंगे। यानी दुश्मन तुम पर अपने जोश में पहुँचेंगे का मतलब क्या है कि बदर के दिन का गुस्सा और उसका जोश और उसका बदला लेने के लिए। अल्लाह तो तुम्हारी मदद करेगा। ये जो लफ्ज़ है ना मुसव्विमीन, सौम से, मुसव्विम कहते हैं जिस पर कोई निशानी हो, यानी पशम हो या कोई और निशानी हो, निशान लगे हुए, अपॉइंटेड लिख लीजिए। हज़रत इब्ने अब्बास कहते हैं कि गज़वे बदर में फरिश्तों की निशानी ये थी कि वो सफ़ेद पगड़ियाँ बांधे हुए होते थे, जिनके शिमले यानी पगड़ी के ऊपर का लंबा सा हिस्सा जो खींचा जाता है वो कमरों पर डाले होते थे, और गज़वे खुनैन में इनके उमामे सुर्ख रंग के थे। देखिए आज तो फ़ौज का एक ख़ास लिबास होता है ना, वर्दी है, तो जिस वक़्त की ये जंगें थी वहाँ तो लिबास ही नहीं थे पता होते, कोई पता नहीं चलता था ये मुस्लिम आर्मी है या नॉन मुस्लिम आर्मी है। तो बात सारी क्या, अभी तक जितनी बात है उसका खुलासा क्या है कि अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, लीडरशिप क्वालिटीज़ पैदा करो, जज्बे जोश लेकर आओ, कोशिश पूरी करो, अतीउल्लाह और अतीउर रसूल करो। आगे वो आयतें आएंगी जहां हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको रोकना और उनका अपनी जगह छोड़ना अपनी आंखों से देखेंगे, ऐसे ही लगता है वहाँ। अभी तक हमें ये पता चल गया कि मुसलमानों की फतह और नाकामी उसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं। अल्लाह ताला अपने हिस्से का काम कर देता है, शर्त एक है कि मुसलमान अपने हिस्से का काम करें। ये जो बात है ना ली यकताम तरफ मिन अल्लज़ीन कफरू, तो तरफन से मुराद ताइफा, एक हिस्सा। यानी अल्लाह चाहते हैं कि दुश्मनों का जोर टूटे। उसमें तो मुसलमानों के मारे गए, बदर में इनके मारे गए थे, कत्ल किए जाएँ, इनकी अफरादी कुव्वत कम हो, इनकी ज़मीन इनके हाथों से निकल जाए, इनकी ज़ालिमाना हुकूमत का दायरा तंग हो जाए, ये सारे इसके अंदर मानी आते हैं। इनकी दौलत माले गनीमत की कमी की वजह से कम हो जाए, शिकस्त के नतीजे में इनकी सरगर्मियाँ जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं उसमें कमी आ जाए। क़तादा कहते हैं कि अल्लाह ने बदर के दिन काफरों के एक हिस्से को काट दिया, इनके बड़े बड़े सरदार और इनकी बुराई के कायद मारे गए। हत्ता कि आपको कहते हैं कि बदर के बाद तवायफों का एक गिरोह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना में आया, कहने लगे कि आपने तो सारे सरदार ही मार दिए, जो हमें नजराने देते थे, जो गने गचगवाते थे, जो हमारे ऊपर पैसा लगाते थे, वो तो मारे गए, मक्का में तो हम बैंकरप्ट हो रहे हैं, हमारे पास तो काम ही कोई नहीं है। तो उनको आपने मार दिया तो हमें भी इधर ही रख ले, हमने अब मक्का में क्या करना है। यानी अय्याशियों के वड्डे बंद हो गए उन सरदारों के दुनिया से जाने के बाद। ये सारी बातें सुनकर जोश घर आता है, खून गर्म होता है। ये ठंडा ठंडा रहकर तो नहीं बातें समझ आती ना, इसके अंदर वाकई इंसान के अंदर जज्बा आना चाहिए, जोश आना चाहिए। और मुझे तो ऐसे लगता है कि वाकई एक नया अल्लाह के हुक्म से बंदे के अंदर ईमान ताज़ा हो जाता है। मैंने तो जब भी जंगों की कोई आयतें पढ़ाई या इस तरह के अमली मार के पढ़े पढ़ाए मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने आप को दोबारा नहीं देखती हूँ। ये जो लफ्ज़ फौर है ना, ये नया है। फवारा का लफ्ज़ सुना, इसी से है। फौरन का लफ्ज़ भी इसी से, फारा फौरन, जोश मारना, फूट कर निकलना। फ़ारा तिल क़िद्र कहते हैं हांडी जोश खाने लगी, और फवारा वो जगह जहाँ से चश्मा जोश मार कर निकले। रजुलुन फयूरुन कहते हैं तेज़ मिजाज आदमी को, जल्दी से गुस्से में आने वाला। सूरह हूद में हम पढ़ेंगे कौम नूह पे जो अज़ाब आया था उसके बारे में, वफारत तन्नूर, ज़मीन में से जोश के साथ चश्मे उबल गए। और जहन्नुम के लिए भी आता है ना सूरह मुल्क में, वहिया तफूर, वो तो जोश मार रही होगी। अल्लाह ताला हमें बचा के रखे बग़ैर रुके किसी काम को करना, इसको कहते हैं। और मुसव्विमीन जैसा कि बताया सीन वाव मीम से, जिसमें क्या है कि किसी पे निशान लगा दिया जाए। अरब लोग बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ों या कुछ जानवरों के ऊपर निशान भी लगा दिया करते थे। अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र वाला बना दे। यक बीता उनका लफ्ज़ मुझे लगता है आपको समझ नहीं आया होगा 127 आयत में, इसको लिख लीजिएगा। कबता है ये असल लफ्ज़, काफ बाता, कुबितु कमा कुबितल लसीना का लफ्ज़ आगे आएगा, मुंह के बल गिरना। कुब्बत का लफ्ज़ भी कुरान में आता है, शिकस्त देकर लौटा देना। कबतुन की असल कबदुन है, कबत कहते हैं कलेजे को, जिगर को, दा को ताल में बदल दिया। जिगर जो होता है ना गैज़ो गज़ब का मखज़न होता है। मुराद क्या है इसका कि दुश्मन को उसके गैज़ो गज़ब समेत लौटा देना। दुश्मन को जलील कर देना। जाहिर है कि जब उसको वापस जाना पड़ेगा तो उसको गुस्सा आएगा ना। और खाइबीन खा या बा से है, खाब यखीब खैबतन कहते हैं महरूम रह जाना, नुकसान उठाना, मायूस हो जाना, तवक्कुआत का मुनक़ते हो जाना, नामुरादी की तरफ, यानी अपने उस काम को किए बगैर उनको वापस जाना पड़ा जो कि करने की वो नीयत रखे हुए थे। अल्लाह ताला हमें गौर व फिक्र वाला बना दे।
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ قد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين